नमस्कार भारत, 20 दिसंबर दिन रविवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुनवाई सोमवार को, लेकिन रिहाई पर रोक नहीं।
मैं ये होप करती हूँ सरकार से और दिल्ली पुलिस से कि जब तक अब इस मैटर पे प्रॉपरली सुनवाई ना हो तब तक उसको रिलीज ना करें, मंडे तक अब वेट करना पड़ेगा।
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को जमानत दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा उनकी मंशा पर सवाल बेबुनियाद।
क्या आप कहते हो इसकी मंशा खराब है, इसकी नीयत खराब है, ये सारे बेबुनियाद सवाल है। जो तथ्य दिए हैं उसमें कुछ दम है कि नहीं, प्राइवेसी की स्पंती नहीं, ये तो हमें देखना है।
और क्या कहते हैं संभल के लोग, जहां अलकायदा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा कर रही है पुलिस। लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। दिल्ली महिला आयोग ने निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ कल देर रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सोमवार को यानी कल सुनवाई होगी। तय समय के अनुसार आज नाबालिग दोषी की रिहाई होनी है और हाई कोर्ट इस पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर चुका है, लेकिन निर्भया के माता पिता और बहुत से लोग नाबालिग दोषी की रिहाई का विरोध कर रहे हैं। सऊदी अरब की सीमा से लगे पश्चिमोत्तर यमन में हूथी बागियों और सरकारी सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में कम से कम 68 लोगों के मारे जाने की खबर है। कहा जा रहा है कि संघर्ष हराद शहर के निकट शुरू हुआ, जिसे दो दिन पहले सरकारी सेना ने अपने कब्जे में कर लिया था। सैन्य सूत्रों के मुताबिक 28 सैनिक मारे गए हैं, जबकि हूथी बागियों का कहना है कि संघर्ष में उनके 40 लड़ाके मारे गए हैं। उधर यमन में मौजूद यूनिसेफ के प्रतिनिधि जूलियन हार्नेस ने कहा है कि युद्ध के कारण लोगों का जीना मुहाल हो रहा है।
What we see is both the direct impact of the conflict, 1,500 children killed.
हम जो इस संकट का बुनियादी असर देख रहे हैं वो ये कि अब तक 1,500 बच्चे या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। 25 लाख लोग बेघर हुए हैं और इनमें से कुछ लोग तो अप्रैल महीने से विस्थापित हैं। देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। 25 लाख लोगों को संभालना यूनिसेफ जैसे संगठनों के लिए खासा मुश्किल है, इसलिए इस संकट को खत्म करना होगा ताकि लोग जी सकें। यमन में यूनिसेफ के प्रतिनिधि जूलियन हार्नेस के शब्द। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो उसे उकसाने वाले गंभीर कदम उठा रहा है। ये आरोप 10 दिसंबर को दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों के पास अमरीकी बमवर्षक विमानों B-52 की उड़ान के बाद लगाया गया है। अमरीकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि वो इस बारे में मिली शिकायतों की पड़ताल कर रहा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की ने कहा है कि वो उत्तरी इराक से अपने और सैनिकों को हटाएगा। कुछ दिन पहले भी तुर्की ने कुछ सैनिक हटाए थे। तुर्की ने इसी महीने अपने सैकड़ों सैनिकों को मोसुल के नज़दीक बाशिका सैन्य ठिकाने पर भेजा था और इसे नियमित तैनाती का हिस्सा बताया था, लेकिन इराक ने तुर्की से अपने सैनिक तुरंत हटाने की मांग की। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी शुक्रवार को तुर्की के राष्ट्रपति से कहा कि वो इराक से अपने तनाव को कम करें। स्पेन की मिरिया लालागुना रोयो को मिस वर्ल्ड 2015 चुना गया है। चीन के दक्षिणी शहर सानिया में उन्होंने 100 से भी ज्यादा देशों की सुंदरियों को पछाड़कर यह खिताब जीता है। प्रतियोगिता में शामिल रही भारत की अदिति आर्या अंतिम 20 में भी जगह नहीं बना पाई और भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने शनिवार को अपना तीसरा पेशेवर मुकाबला भी अपने नाम कर लिया। मैनचेस्टर में उनका मुकाबला बुल्गारिया के सामेत हुसैनोव से हुआ। बीबीसी समाचार।
आज है 20 दिसंबर दिन रविवार। नमस्कार भारत, में अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड के नाबालिग दोषी को आज रिहा किया जा सकता है, लेकिन उसकी रिहाई रुकवाने के लिए कल देर रात दिल्ली महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रात करीब 10 बजे से शुरू हुई गतिविधि में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर के घर पहुंची। कई कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद याचिका स्वीकार कर ली गई और इसे वेकेशन बेंच को सौंपा गया, लेकिन वेकेशन बेंच ने कहा कि इस पर सुनवाई अब सोमवार को होगी, लेकिन रिहाई पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। पिछले दिनों भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी नाबालिग की रिहाई रोकने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। कल निर्भया के माता पिता ने उस बाल सुधार गृह के बाहर प्रदर्शन किया जिसमें नाबालिग दोषी को 3 साल से रखा गया था। देर रात तक चले घटनाक्रम पर अशोक कुमार की रिपोर्ट।
आधी रात के समय मीडिया का ये तांता सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा था। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड के नाबालिग दोषी की आज होने वाली संभावित रिहाई को रोका जा सके। मालीवाल और उनके वकील चाहते थे कि याचिका पर सुनवाई रात में ही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने इसकी सुनवाई कल यानी सोमवार को निर्धारित की है। स्वाति मालीवाल ने पत्रकारों को बताया,
मंडे को थर्ड आइटम नंबर 3 पे लिस्ट हो गया है, केस सब ज्यूडिस है और अब मैं ये होप करती हूँ सरकार से और दिल्ली पुलिस से कि जब तक अब इस मैटर पे प्रॉपरली सुनवाई ना हो तब तक उसको रिलीज ना करें, मंडे तक अब वेट करना पड़ेगा।
इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि नाबालिग अपराधी को सजा की मियाद से ज्यादा समय तक सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट का कहना था कि मौजूदा कानून में इसी तरह का प्रावधान मौजूद है, ऐसे में दिल्ली महिला आयोग की ताजा याचिका में किस आधार पर रिहाई को रोकने की बात कही गई है। इस बारे में आयोग के वकील राजेश इनामदार बताते हैं,
सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं, ये ग्राउंड रेज कर रहे हैं कि कन्विक्ट के जो रिफॉर्मेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो लिए गए हैं कि नहीं, और उनके लिए बगैर जब तक उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो जब तक उसको असेस ना किया जाए, डिटरमाइन नहीं किया जाए कि आगे जाके उनसे फिर वो इस तरह के कोई गुनाह करे या ना करे, इसके जब तक डिटरमाइन नहीं होता है तब तक उनको रिलीज ना किया जाए।
3 साल पहले दिल्ली में एक चलती बस में एक युवती के साथ बर्बर बलात्कार और हत्या की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इससे पैदा रोष के कारण सरकार को महिला सुरक्षा पर एक नया कानून बनाना पड़ा, लेकिन जघन्य मामलों में नाबालिग अपराधियों को लेकर बदलाव का बिल अब तक राज्यसभा में अटका पड़ा है। निर्भय की मां सरकार के रवैये से दुखी दिखाई देती हैं। कल उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा,
अरे कब तुम कानून बदलोगे, कब तुम्हारी आँखें खोलेगी, सरकार में आना होता है तो काला झंडा लेके घूमते हैं कि हम गरीबों को इंसाफ देंगे, गरीबों की रक्षा करेंगे, जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो आँख बंद कर लेते हैं। कितनी बच्चियां बलि चढ़ेगी, कब कानून बदलेगा, कब सरकार की आँखें खुलेगी।
इस बीच कल ऐसी भी खबरें आईं कि एक प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने निर्भया के माता पिता और लगभग 40 छात्रों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर तुरंत उन्हें रिहा करने की मांग की। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने सफाई दी कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था, बल्कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें सड़क से हटाया गया और बाद में उन्हें उनके घर पहुंचा दिया गया। खैर, अब नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका तो मंजूर कर ली है, लेकिन रिहाई पर रोक नहीं लगाई गई है। ऐसे में इस बात पर आज सबकी नजरें होंगी कि नाबालिग दोषी को रिहा किया जाता है या फिर कल होने वाली सुनवाई तक इंतजार किया जाएगा।
पिछले दिनों बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने निर्भया की माँ आशा देवी से लंबी बातचीत की थी। आइए आपको इस बातचीत का वो अंश सुनाते हैं जिसमें उन्होंने नाबालिग दोषी की रिहाई पर सवाल उठाए थे।
देखिए, हमें इस पे विश्वास नहीं होता कि वो एनजीओ के शॉप पर जाएगा, चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए तो वो आजाद है, जेल से छूट गया वो आजाद है, तो चाहे उसको एनजीओ भेजे, चाहे घर में रखे, चाहे अपने पास रखे, उससे वो मेरे लिए मायने नहीं लगता। मेरे लिए मायने ये रखता है कि हमारे बच्ची का एक दोषी छूट गया। अभी जो घटना है वो कुएं, जो कुएं में डाले हैं उसमें 2 जुगनाइल है, पीछे जो 2.5 साल की बच्ची के साथ हुआ था उसमें 2 जुगनाइल है, उन बच्चियों को तो लाइफ खराब हो गई, पता नहीं ये भी बच्ची बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन ये तो जुगनाइल करके छूट जाएंगे। उस टाइम अगर इस कानून को बदल दिया गया होता तो ये कम से कम इनको तो सजा मिलती, चाहे ये करते ही नहीं, कम से कम मन में डर तो रहता कि नहीं हम भी करेंगे तो हमें भी सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा है नहीं, कानून का कोई डर खौफ नहीं है, इनके लिए तो राइट है कि हम 18 साल से पहले कुछ भी करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इतना बड़ा क्राइम होने के बाद उसके दोषी को अगर हमारी न्यायपालिका चाहे हमारी सरकार अगर छोड़ रही है तो ये हम उन उम्र के बच्चों को क्राइम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो 18 साल से पहले, आपके लिए कोई सजा नहीं है। ये समाज के लिए गलत संदेश जा रहा है और वो छूटेगा तो एक समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से उसको बचाने के लिए हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, तो पब्लिक की भी सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी बनती है। एक बार पब्लिक के बारे में भी और मेरे जैसे विक्टिम के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे पे क्या गुजरती।
हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है कि नाबालिग अपराधी को पहले से तय समय के मुताबिक ही 20 दिसंबर को रिहा किया जाएगा और उसे सजा की मियाद से ज्यादा समय तक सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता है। कल नेशनल हेरल्ड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दे दी। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर अदालत ने दोनों को समन किया था, जिसे लेकर काफी राजनीतिक शोर शराबा हुआ। कल भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया, जो जमानत मिलने के बाद जश्न में बदल गया। स्वामी ने इस मामले में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक दुर्भावना बताती है। सुशीला सिंह की रिपोर्ट।
नेशनल हेराल्ड केस में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप में कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में याचिका दायर करने वाले बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी अदालत में मौजूद थे। दोपहर के करीब 3 बजे इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बिना शर्त के 50,000 के मुचलकों पर जमानत दे दी। अदालत के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंची। नारेबाजी के बीच उन्होंने पत्रकारों के सामने संक्षिप्त टिप्पणी की।
मुझे जरा भी संदेह नहीं है सच्चाई सामने आएगी। मौजूदा केंद्र सरकार अपने विरोधियों को जानबूझकर निशाना बना रही है और इसके लिए वो सरकारी एजेंसी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है।
गांधी परिवार की तरफ से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा और बताया कि इस मामले में बिना किसी शर्त के जमानत दे दी गई है। हालांकि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया। जहां कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है, वहीं इसका जवाब देते हुए बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा,
सत्ता में तो ये करप्शन और कुशासन के माहिर थे, लेकिन विपक्ष में आकर के भी करप्शन और कुशासन के किंग बने हुए हैं और इसीलिए करप्शन के पक्ष में जिस तरह का उनका क्रांतिकारी व्यवहार था वो पूरे देश ने आज देखा।
ये पहला मामला है जब सोनिया गांधी को अदालत में पेश होना पड़ा है। अदालत में इस मामले के आने से पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नेताओं से कोर्ट के बाहर कोई जुलूस और तमाशा ना करने, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने और कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की बात कही थी। इस मामले में अदालत में पेश होने से कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने खुद को इंदिरा गांधी की बहू भी कहा था। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई का कहना है,
बात जो है जो अदालत में चल रही है उसके अभी कई पहलू है और उसमें कांग्रेस को ना दोष मुक्त किया जा सकता है ना उन्हें दोषी करार दिया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों का सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसका राजनीतिक आकलन करके उनको लग रहा है कि उससे उनको राजनीतिक फायदा हो सकता है।
आपको याद होगा कि नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी दी एसोसिएट जनरल लिमिटेड की स्थापना 1938 में हुई थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस अखबार की शुरुआत की थी और 2008 में ये अखबार बंद हो गया था। इसके बाद एक नई कंपनी यंग इंडिया ने 2010 में इसका अधिग्रहण कर लिया था। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि एसोसिएट जनरल की संपत्ति लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए बतौर ऋण दिए थे जो गैर कानूनी हैं। उनका कहना है कि नेशनल हेराल्ड अखबार के बंद होने के बाद कंपनी की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया गया और यंग इंडियंस नाम की एक कंपनी बनाई गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी 2016 में होगी। सुशीला सिंह, BBC, दिल्ली।
तो इस मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत में याचिका डालने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से बात की। सुब्रमण्यम स्वामी मानते हैं कि ये इस मामले में उनकी पहली सफलता है।
संपूर्ण सफलता मिली। कल तक तो कह रहे थे कि हम बेल नहीं लेंगे, जमानत नहीं लेंगे और जाए और 50,000 की रकम भी रखी और एक श्योरिटी भी सामने आए, यानी इसके माने इनके ऊपर विश्वास नहीं हुआ कोर्ट को। तो एक एंटनी श्योरिटी बने, यदि कुछ सोनिया गांधी ट्रायल से भाग जाई तो फिर एके एंटनी के को पकड़ा जाएगा। इसी प्रकार से प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को दिया था, सारे जो आरोपी थे उनके सबके एक श्योरिटी भी पेश हुई थी। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई में हमें छुट्टी देनी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं आगे की कार्रवाई में आपको उपस्थित रहना है, उसके बाद देखेंगे। और मैंने ये कहा कि बीच में गायब हो जाते हैं तो और पता नहीं होता, और फिर ये जो कार्रवाई है बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, स्थगित हो जाएगी। तब कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, तो फिर आगे देखते हैं, आगे लापता हो जाएंगे तो फिर हम दोबारा पेश करेंगे कि इनका पासपोर्ट जमा करने के लिए आदेश दिया जाए।
जी, कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी सरकार जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है इस पूरे मुद्दे पर।
हाँ, तो क्या इसमें ये सही भी है, तथ्य है कि नहीं है, यही तो देखना है। यही तो कोर्ट ने भी कहा कि आप कहते हो इसकी मंशा खराब है, इसकी नीयत खराब है, ये सारे बेबुनियाद सवाल हैं। जो तथ्य दिए हैं उसमें कुछ दम है कि नहीं, प्राइवेट की स्पंती नहीं, ये तो हमें देखना है। और ये अभी नहीं कह, सुप्रीम कोर्ट तो कितने साल से कह रही है।
ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे का जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है, और आपको इसके लिए फायदा भी दिया गया है।
फायदा क्या दिया? फायदा
जिस तरह से गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि आपको जेड सिक्योरिटी मिली है, आपको घर भी दिया गया है।
जेड सिक्योरिटी कांग्रेस की गवर्नमेंट नरसिम्हा राव ने, बीच में ये पावर में आए तो इन्होंने उसको थोड़ा कम किया था। यानी जेड सिक्योरिटी तब भी थी, तमिलनाडु के लिए थी, कर्नाटक के लिए थी और आंध्रा। फिर उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी सरकार आई, उन्होंने कहा कि सारा देश में खतरा है, ये कैसा हो सकता है, तो उन्होंने देश के लिए दोबारा जैसे नरसिम्हा राव ने किया था वैसे कर दिया। उसके बाद सीआरपी ने कहा आप तो ये निजी घर में रहते हैं, इसलिए तो बहुत छोटा है, इसमें तो हम रह नहीं सकते, तो इसीलिए सरकारी कोठी देने के लिए फैसला हुआ सीआरपी के कहने पर। तो इसमें क्या संबंध है, इससे कोई संबंध नहीं है, कोई घर मेरे लिए बड़ी चीज है क्या?
कांग्रेस का ये कहना है कि आप सरकार के कहने पर कर रहे हैं, आप बीजेपी से तो है ही, लेकिन बीजेपी ये पल्ला झाड़ रही है कि उन्होंने नहीं कहा आपको इस मुद्दे को उठाने के लिए। और
बिल्कुल सही कह रही है, जब हमारी सरकार की चीफ मिनिस्टर थे रामकृष्ण हेगड़े, उसका मैंने केस किया था, अकेला किया था, उसको फिर गद्दी से उतरना पड़ा। तो इसीलिए अनाप शनाप कहने में आसान है, जो चोरी करते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं।
ये थे सुब्रमण्यम स्वामी, और अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
आज निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के नाबालिग दोषी को रिहा किया जा सकता है, हालांकि दिल्ली महिला आयोग ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में देर रात याचिका दायर की। सर्वोच्च अदालत इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अदालत में पेशी के बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कुछ आरोप प्रत्यारोप आज भी देखने को मिल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला आज हैदराबाद का दौरा करेंगे, जहां उनका कुछ युवा उद्यमियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। गुजरात के कच्छ में चल रही डीजी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चीन की राजधानी बीजिंग में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए फिर से स्मॉग का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
और अब समय है एक खास रिपोर्ट का। पिछले दिनों सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया कि उन्होंने भारत में अलकायदा के मॉड्यूल को भेदने में कामयाबी हासिल की है, और इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को इस संगठन से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में से 2 उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रहने वाले हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि इस महाद्वीप में अलकायदा का जिसे प्रमुख बनाया गया है यानी मौलाना आसिम उमर भी संभल के दीपा सराय का रहने वाला सनाउल हक है। लेकिन गिरफ्तार लोगों के घर वालों को यकीन नहीं है कि उनके घर का कोई अलकायदा से संबंध रखने वाला हो सकता है। संभल से बीबीसी संवाददाता सलमान राबी की रिपोर्ट।
जुमे की नमाज के बाद एक एक कर निकल रहे नमाजियों के चेहरे पर आज रौनक नहीं है। उनकी चिंता है कि भारत में आजमगढ़ के बाद आतंकवाद का बिल्ला अब उनके जिले यानी संभल पर आ लगा है। सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही दीपा सराय के रहने वाले 2 लोगों मोहम्मद आसिफ और जफर मसूद को अलकायदा से संबंध रखने की वजह से गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक तीसरा घर उसका बताया जा रहा है जिसे इस महाद्वीप में अलकायदा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। یعنی مولانا عاصم عمر عرف ثناء الحق، ان سب کا گھر 100 میٹر کے دائرے میں ہے۔ مسجد کے پاس ہی محمد آصف کا گھر بھی ہے، جہاں اس کے پتا عطاء الرحمان کو پولیس کے آروپوں پر بھروسہ نہیں ہے۔
دن میں لوگ بتلا رہے تھے ہم کے آصف کا نام ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ ابھی نام نہیں دیا، پیپر میں دو آدمیوں کا نام ہے، نام نہیں ہے، دو آدمی لکھے بس۔ اور وہ پھر شام کو معلوم ہوا کہ ٹی وی پہ پٹی آ رہی ہے، اس میں آصف کا نام ہے۔ یہاں سے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، بیوی سے کہہ گیا تھا کہ دیر بھی جا رہی ہوں، اور وہ کچھ سامان وامان لینے کے گیا تھا۔ کوئی ہمارے پورے نسل میں آج تک ایسا نہیں کہ کوئی جرائم پیشہ ہو یا کوئی ویسا ہو، وہ کبھی اس کام کو نہیں کرا کسی نے۔
دلی پولیس کی اسپیشل سیل کا دعویٰ ہے کہ دیپا سرائے کے رہنے والے محمد آصف بھارت میں القاعدہ کے ماڈیول کے سنستھاپکوں میں سے ایک ہے۔ اسپیشل سیل کے آیوکت اروند دیپ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
تھری پرسنز ہیو بین اریسٹڈ، دے ور ایکٹیولی ورکنگ فار دی القاعدہ انجن فنڈڈ، دے ور انڈر سرویلنس آف دی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسیز فار ا لانگ ٹائم، اینڈ دس آصف ہیڈ گون ٹو ایران ان دی ایئر 2013۔
دلی پولیس کے وشیش آیوکت اروند دیپ کہہ رہے تھے کہ آصف ایران کے راستے افغانستان پہنچا اور پھر اتری وزیرستان میں اسے پرشکشن بھی دیا گیا۔ یہیں پر آصف کی ملاقات مولانا عاصم عمر عرف ثناء الحق سے ہوئی، جو اس کا دیپا سرائے میں پڑوسی بھی تھا۔ چونکہ اس مہادویپ میں ثناء الحق القاعدہ کا پرمکھ بن چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے پڑوسی آصف کو بھارت کا امیر یعنی پرمکھ بنا دیا۔ مگر آصف کے بھائی صادق پولیس کے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا بھائی کبھی ایران نہیں گیا۔
ایران کی تو ایسی بات ہے کہ اگر وہ سعودی گئے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اس کا اندراج ہوگا، ایران گئے ہیں تو ایئرپورٹ سے اس پہ مل جائے گی خبر، لیکن ہم تو چھوڑنے کے لیے گئے تھے، سعودی کے لیے گئے تھے، میں گیا تھا، میری بھابھی گئی تھی، بچے گئے تھے ہمارے، انہیں چھوڑنے کے لیے بھی گئے تھے، ہم لینے کے لیے بھی گئے۔
صادق کا کہنا تھا کہ اگر آصف دوشی پایا جاتا ہے تو پھر اسے پھانسی دے دی جائے، مگر وہ اگر نردوش ثابت ہوتا ہے تو اس کے پریوار کو انصاف ملنا چاہیے۔
جھوٹ ہے تو ہم بالکل انصاف کی امید کریں گے، عدالت سے بھی اور پولیس سے بھی، اور اگر کسی وجہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے 1% اگر ان کا کوئی جوڑ اس سے ہے، تو ہم پھر حکومت سے یہ التجا کریں گے کہ آپ انہیں پہلی فرصت میں پھانسی پلٹ کر دیں۔ کوئی جیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اگر آپ کا لنک میرے پتہ ہے، آپ کو جڑا محسوس کر رہے ہیں، تو آپ پہلی فرصت میں پھانسی لگا دیں۔ ہم بالکل کوئی شکایت نہیں کریں گے حکومت سے، کیونکہ ہم اس چیز کے بالکل خلاف ہیں کہ ہمارا کوئی مطلب دیش کے ساتھ غداری کرے یا ملک کے ساتھ کرے، کیونکہ ملک ہمارا کوئی پرایا نہیں ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، سمجھے، یہ کوئی ہمارے کوئی غیر لوگ نہیں ہیں جن سے ہم دشمنی دکھائیں گے اپنی، سب ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ حکومت سے ہماری یہی التجا کہ خدا کرے جو بھی ہو اس پہ انصاف سے کام لیں، بالکل بھید بھاؤ کچھ نہ ہو کسی طرح کا، جو بھی ہو انصاف۔
محلے سے تین لوگوں کے القاعدہ سے سمبندھ کی بات کا یہاں کے لوگ یقین نہیں کر پا رہے ہیں۔
کسی تنظیم کا جیپ کرائے کے مکان پر رہے گا، سوچنے کی بات ہے،
نہیں ہے لوکل میں ہی، سب جانتے ہیں، اس نے اپنے بچوں کے علاج کے لیے مکان بیچا،
سب جانتے ہیں، پوری بستی اچھے خاصے 50,000 کی آبادی،
یہ نہیں کہ کوئی باہر کام کر رہ گیا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو اپنے مکان یہی کا رہنے والا ہے وہ مکان بیچ رہا ہے صرف اس لیے کہ اس نے اپنی جو معاشی پریشانیوں کی وجہ سے۔
دیپا سرائے میں ایک کے بعد ایک گرفتاری سے استھانیہ پولیس پرشاسن بھی حرکت میں آ گیا ہے۔ ضلع کے پولیس ادھیکشک اتل سکسینا کا کہنا ہے کہ پولیس نے اب علاقے میں چوکسی بڑھا دی ہے۔
ہم اپنے استر پہ سبھی جگہ ہم لوگوں نے سرچ آؤٹ کرائی ہے، اور جو بھی وہاں کے چھوٹی موٹی فیکٹریاں ہیں ان میں جو کام کر رہے ہیں باہر کے لوگ، کہ ہم لوگ پولیس ویریفیکیشن کرانے کے لیے بتا دیا ہے کہ سب کو ویریفائی کرا لیں، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ وغیرہ سب جگہ ہم لوگ نے چیک بھی کرایا تھا، کیونکہ سنبھل میں ایسا تو کوئی ابھی تک انفارمیشن نہیں تھی، اور اس کے بارے میں بھی کوئی اس کا کرمنل انسیڈنٹ نکلا نہیں۔
استھانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آزادی کی لڑائی میں سنبھل کے دھرم گروؤں کا بڑا یوگدان رہا ہے، اس لیے اس علاقے کو آتنکواد کا گڑھ بتایا جانا درباگیپورن ہے۔
منشی امام الدین صاحب چونیے کی بھٹی میں جن کو ڈال کر انگریزوں نے سزا موت دی تھی، وہ منشی امام الدین یہی کے رہنے والے،
اس محلے کا نام جو ہے وہ جو اس وقت آتنکواد کا گڑھ بتایا جا رہا ہے، شرم نہیں آتی جو ہے،
بس ہمارے بچوں کو ڈرایا جا رہا ہے اس طرح۔
بہرحال گرفتار کیے گئے لوگوں سے پوچھ تاچھ جاری ہے، جنہیں فی الحال پولیس کی ریمانڈ پر لیا گیا ہے۔ ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ وہ القاعدہ کے بھارت میں تیار کیے گئے ماڈیول کو بھیجنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس کو یہ بھی احتیاط برتنی چاہیے کہ نردوش نوجوانوں کو اس میں نہ پھنسایا جائے۔ سلمان راوی، بی بی سی، دیپا سرائے، سنبھل۔
ये थे संभल से सलमान राबी। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का, अशोक कुमार के साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं अखबारों के साथ।
जी पंकज जी, दिल्ली से छपने वाले सभी अखबारों में आज सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं की जिस तरह कल नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत में पेशी हुई उससे जुड़ी खबर सब जगह है। जनसत्ता ने इस पर लिखा है कोर्ट में जमानत बाहर सियासत, मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को। नवा टाइम्स की सुर्खी है हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल अदालत में हाजिर, बाहर शक्ति प्रदर्शन। अखबार लिखता है कि कांग्रेस ने इस पेशी का इस्तेमाल अपने सोए संगठन को जगाने, नेतृत्व को एकजुट करने और सरकार पर हमले के आयोजन के रूप में किया।
सारे शीर्ष नेता मौजूद थे, आपने भी देखा ही होगा,
पूरी की पूरी कांग्रेस पूरी कांग्रेस की क्रीम मौजूद थी। उधर अमर उजाला इस पर लिखता है जमानत के बाद बोले राहुल और सोनिया, झुकेंगे नहीं। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर निर्भया कांड में नाबालिग दोषी की रिहाई को लेकर है। नवभार टाइम्स कहता है कि आज होगी रिहाई, विरोध प्रदर्शन हुए तेज। वहीं हिंदुस्तान इस पर खबर लगाई है नाबालिग की रिहाई को रोकने के लिए देर रात तक होती रही कोशिश, देर रात सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष। हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर देखें तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बयान है जिसमें उन्होंने अपने मंत्रियों को भारत के खिलाफ न बोलने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी अखबार द नेशन के हवाले से ये खबर दी गई है और कहा गया कि नवाज शरीफ ने निर्देश इसलिए दिया ताकि भारत के साथ शांति प्रक्रिया पर कोई बुरा असर ना पड़े। जनसत्ता की इस पर सुर्खी सुन लीजिए, भारत के बारे में शराफत से बोलेंगे शरीफ के मंत्री,
शरीफ के ही मंत्री, शरीफ भी बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। और अब समय है खेल की खबरों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। कल मैनचेस्टर में भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह अपने तीसरे पेशेवर मुकाबले में उतरे। वहां उनका सामना बुल्गारिया के सामिट हुसैनोव से हुआ। इससे पहले विजेंदर सिंह ने अपने दोनों मुकाबले जीते तो वहीं हुसैनोव ने 14 में से 7 मुकाबले अपने नाम किए थे। 6 राउंड के पहले राउंड में विजेंद्र 2 अपरकट और 1 स्ट्रेट पंच लगाने में कामयाब रहे और हुसैनोव को बचाव पर मजबूर कर दिया। और दूसरे राउंड में तो उन्होंने लगातार मुक्कों की ऐसी बौछार की कि मुकाबले को रोकना पड़ा। इसके साथ ही दूसरे राउंड के 35वें सेकंड में ही विजेंद्र सिंह ने हुसैनोव को मात दे दी। ये विजेंद्र सिंह की लगातार तीसरी जीत रही। उधर बीसीसीआई की चयन समिति ने कल भारत के आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। वैसे एक दिवसीय टीम में सुरेश रैना को जगह नहीं मिली, जबकि मोहम्मद शमी एक दिवसीय और 2020 दोनों टीमों में जगह बनाने में कामयाब रहे। जबकि 2020 टीम में युवराज सिंह के साथ साथ अनुभवी तेज गेंदबाज आशीष नेहरा की वापसी हुई है। भारतीय टीम के चयन को लेकर क्रिकेट समीक्षक प्रदीप मैगजीन कहते हैं,
साउथ अफ्रीका ने यहाँ के एक्सपोज किया, अब बाहर जा रहे हैं वहाँ पे तो और भी परेशानियाँ आएंगी। तो एक बैटिंग की जो प्रॉब्लम है इंडिया की, वो भी विदेशी कंडीशंस में है, इस वजह से शायद कुछ हेर फेर बदल हुई है। सुरेश रैना आप कहेंगे सरप्राइज है कि टीम में है नहीं वनडे की, लेकिन आप दूसरे हिसाब से सोचे तो सुरेश रैना पीछे उनसे रन ही नहीं हो रहे हैं और वो शॉर्ट बॉल पे जो एक्सपोज हुए हैं वो इंडियन कंडीशंस में भी एक्सपोज होते जा रहे हैं। युवराज की वापसी पे भी मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, इस वजह से कि आप आगे की तरफ देख रहे हैं, युवराज तो ऐसा लग रहा था कि अब खत्म हो गया नाम उनका।
उल्लेखनीय है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने 5 एक दिवसीय और 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगी।
और कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। दिल्ली महिला आयोग ने निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ कल देर रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सऊदी अरब की सीमा से लगे पश्चिमोत्तर यमन में हूथी बागियों और सरकारी सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में कम से कम 68 लोगों के मारे जाने की खबर है। चीन ने अमरीका पर आरोप लगाया है कि वो उसे उकसाने वाले गंभीर कदम उठा रहा है। ये आरोप 10 दिसंबर को दक्षिणी चीन सागर में विवादित द्वीपों के पास अमरीकी बमबर्षक विमानों B-52 की उड़ान के बाद लगाया गया है। और स्पेन की मिरिया लाला गुना रोयो को मिस वर्ल्ड 2015 चुना गया है, जबकि भारत की अदिति आर्या अंतिम 20 में भी जगह नहीं बना पाई। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने, पंकज प्रियदर्शी और अशोक कुमार को अनुमति दीजिए। आपसे ठीक एक घंटे बाद विश्व भारती में होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।